SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलिया में शिक्षण के क्षेत्र से बड़ी खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए स्थायी रूप से शुल्क मुफ्त टेफ अवसर सुनिश्चित करने की नई प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बीते वर्ष प्रदेशों के साथ शुरू हुई एक मुहिम के आधार पर अल्बनीजी सरकार ने वादा किया है कि वे 2027 से प्रतिवर्ष 1,00,000 शुल्क मुक्त टेफ स्थानों को फंड करने के लिए कानून लाएगी। जनवरी 2023 से 30 जून 2024 तक मुफ्त टेफ पाठ्यक्रमों में 5,08,000 नामांकन हुए, जिनमें मुख्य रूप से विकलांगता और वृद्ध देखभाल, तकनीक, निर्माण और प्रारंभिक बचपन शिक्षा के क्षेत्र शामिल हैं। श्री अल्बनीजी का कहना है कि लेबर सरकार इन मुफ्त अवसरों को भविष्य में भी जारी रखेगी ताकि ऑस्ट्रेलियाई लोग बदलती अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य बना सके। वहीं ऑस्ट्रेलियाई छात्रों के ऋण में 20% की छूट दी जाएगी, लेकिन ग्रीन्स का कहना है कि अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। छात्र ऋण चुकाने की योजना में बदलाव के तहत अगले वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय के स्नातकों और ट्रेड अप्रेंटिसेस के छात्र ऋण में 1/5 हिस्सा कम किया जाएगा। यानी उदाहरण के तौर पर सरकार का कहना है कि औसत $27,600 के ऋण वाले स्नातकों के छात्र ऋण से $5,520 माफ कर दिया जाएगा। ये नीति केवल विश्वविद्यालय के छात्रों पर ही नहीं बल्कि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अप्रेंटिसशिप सहायता ऋणों पर भी लागू होगी। ग्रीन्स की टर्शरी शिक्षा प्रवक्ता सेनेटर महरीन फारूकी ने इसे अपनी पार्टी के लगातार बनाए गए दबाव की जीत बताया है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार को इससे अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। वहीं न्यू साउथ वेल्स के विपक्ष नेता मार्क स्पीकमैन का कहना है कि अगर प्रीमियर क्रिस मिंस नए आवास और बुनियादी ढांचे को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें इलेक्ट्रिकल ट्रेड यूनियन के साथ 9 महीने से चल रहे वेतन विवाद को समाप्त करना ही होगा। यूनियन इस बात पर अडिग है कि वे अगले 3 वर्षों के लिए 8% वेतन वृद्धि चाहती है ताकि वर्षों से महंगाई के कारण हुए आय के नुकसान के बाद वास्तविक वेतन में वृद्धि की गारंटी मिल सके। इस विवाद के कारण ऑसग्रिड, इंडोवर एनर्जी और एसेंशियल एनर्जी में काम करने वाले विद्युत कर्मचारी नए घरों को कनेक्शन देने से इनकार कर रहे हैं और सिडनी के रॉयल प्रिंस अल्फ्रेड हॉस्पिटल के पुनर्विकास जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। लिबरल नेता मार्क स्पीकमैन का कहना है कि प्रीमियर मिंस को तुरंत यूनियन के प्रयासों को रोकना चाहिए। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान के सर्वोच्च नेता ने इसराइल और उसके अमरीकी सहयोगी द्वारा किए गए हमलों का प्रतिशोध लेने का संकल्प किया है, जबकि इराक में ईरान समर्थित गठबंधन ने इसराइल के एलात रिसॉर्ट पर ड्रोन से हमले का दावा किया। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस उन ईरान समर्थक समूहों में से है जिन्हें गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला के साथ इसराइल के 1 साल से अधिक चल रहे युद्ध में खींचा गया है। इसराइल के मुख्य सैन्य आपूर्तिकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले अयातुल्ला अली खामेनेई ने चेतावनी दी कि ईरान की प्रतिक्रिया इसराइल के इस्लामिक गणराज्य और उसके सहयोगियों पर हमलों को कवर करेगी। इसराइल की सेना ने कहा कि उसने रेड सी के ऊपर 3 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, जिसके बाद शुक्रवार देर रात कई मोर्चों से 60 ड्रोन लॉन्च किए जाने की खबरें आई थी। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने एलात पर 4 ड्रोन हमले की जिम्मेदारी भी ली है। और अब खबरें भारत से। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को सुपर हीरो बताया है। पिछले हफ्ते जारी अपनी रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना कि भारत ने साल 2015 के बाद से टीबी मामलों को कम करने में जबरदस्त प्रगति की है। ऐसी प्रगति अब तक किसी अन्य देश में नहीं देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में भारत में 27 लाख टीबी के मरीज थे, जिनमें से 25.1 लाख लोगों का इलाज किया गया। इसके बाद भारत का इलाज का दायरा 2015 के 72% से बढ़कर 2023 में 89% हुआ, जिसके वजह से लापता केस का अंतर कम हो पाया। इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर की भी प्रशंसा की गई। WHO ने कहा कि कवरेज में ये छलांग उस गति का नतीजा है जो भारत ने टीबी के मामलों की खोज के लिए बनाई और कायम रखी। यह देश भर में 1.7 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण के प्रयासों को दर्शाता है। WHO ने यह भी स्वीकार किया कि भारत ने टीबी मामलों को कम करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। इसके परिणाम स्वरूप साल 2015 में 1 लाख की जनसंख्या पर 237 टीबी के मरीज थे, जो 2023 में घटकर 1995 पर पहुंच गए हैं। इसकी वजह से भारत में टीबी मरीजों के मामले में 17.7% की गिरावट आई, जो कि 8.3% की वैश्विक गिरावट की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है। इसी के साथ 3 नवंबर 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वृशाली को इजाजत। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।